श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा
श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा
मनोरथा फलप्रदा
मनोरथा फलप्रदा
श्रद्धया साध्यते सर्वं
श्रद्धया साध्यते सर्वं
श्रद्धया तुष्यते हरी
श्रद्धया तुष्यते हरी
श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा सर्व धर्म कर्म के मूल में श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना किया हुआ पुण्य कर्म कोई महत्व नहीं रखता है। श्रद्धा के बिना किया हुआ कोई शुभ कर्म श्रद्धा से फल देता है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा, वो मनोरथ मनवांछित फल देने वाली श्रद्धा। श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धा से सब साध्य हो जाता है। और श्रद्धया तुष्यते हरि, श्रद्धा से ही भगवान हरि संतुष्ट होते हैं। प्रभु तुम्हारे भोग से वस्त्रों से अलंकार से भगवान नहीं खरीदे जाएंगे, लेकिन तुम्हारे रूखे सूखे रोटी भी हो और श्रद्धा मिली हो तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे चलने को तैयार। भगवान शास्त्र गुरु और मंत्र, इसमें जितनी श्रद्धा उतना फायदा। वही के वही महापुरुष हैं, एक श्रद्धालु उनको देखकर गदगद हो जाता है और दूसरा समझता है कि तो पैसेंजर है मेरे, तो उसको तो पैसेंजर जैसे ही दिखते हो महापुरुष, और श्रद्धालु को भगवान तुल्य दिखते हैं और उसे वो फायदा होता है। तो जिनके प्रति श्रद्धा है, हमारी कितनी श्रद्धा है उसकी पहचान क्या, कि हम उनके आदेश आज्ञा कितनी मानते। भगवान के प्रति श्रद्धा है तो भगवान की बात कितनी मानते, शास्त्र के प्रति श्रद्धा है तो शास्त्र की बात कितनी मानते, गुरु के प्रति श्रद्धा है तो गुरु की बात कितनी मानते। हम जितने अंश में उनकी बात तत्परता से मानते उतने ही अंश में हमारे को श्रद्धे के तरफ से लाभ होता है। लोग बोलते हैं क्या करें महाराज, कुछ प्रगति नहीं होती, आध्यात्मिक जगत में शीघ्र प्रगति हो, जल्दी हो जाए, ऐसा कई लोग बोलते हैं। लेकिन जल्दी होने के लिए आपकी श्रद्धा 100 डिग्री की चाहिए। और श्रद्धा एक ऐसा चिगम है कि बढ़ता घटता रहता रहे दिखेगी श्रद्धा। 10% श्रद्धा होगी तभी भी लगेगा मेरे में तो श्रद्धा है, 5% होगी तभी भी श्रद्धा श्रद्धा दिखेगी, और 10 वाली 10 ही रहती, ऐसा नहीं कभी 15 भी बन जाती और कभी 5 भी हो जाती। पानी 80 डिग्री पे हो फिर भी उखलता नहीं, 90 डिग्री पे हो गर्म तो काफी हो गया, 99 डिग्री पे हो तो अब उसको छोड़ दिया तो 98 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लगे रहे तो 100 डिग्री होगा तो उखलेगा। ऐसे ही श्रद्धा जब 100% जोर पकड़ती है उसी वक्त काम हो जाता है, उसी वक्त, फिर देर नहीं लगती। कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धालु ज्ञान को उपलब्ध होता है और ज्ञान मिलने पर परम शांति का एहसास करता है, मचिरेणादि गच्छति उसी समय। ऐसा नहीं कि ज्ञान अभी हुआ और मुक्ति मरने के बाद होगी, नहीं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर क्या है, तत्पर संयते इंद्रिय, वो श्रद्धालु है तो वो श्रद्धे के वचनों में तत्पर भी होगा और इंद्रिय संयम भी होगा। एक प्रसिद्ध वक्ता बोलते हैं मेरे को गांधी जी के प्रति तो श्रद्धा है लेकिन गांधी जी के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। तो क्या खाक है गांधी जी के प्रति श्रद्धा, मैं कृष्ण को तो मानता हूं लेकिन गीता को नहीं मानता हूं, मैं बापू जी को तो मानता हूं लेकिन बापू जी के सत्संग को नहीं मानता हूं। व्यक्ति के विचार ही तो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, भगवान के विचार ही तो भगवत तत्व है, शास्त्र के विचार ही तो शास्त्र है। तो शास्त्र भगवान इष्ट देव उनमें जितनी जिसकी श्रद्धा होती है उतनी तत्परता होती है, उतना संयम होता है, उतना उसे लाभ होता है। कभी कभार बड़े बड़े तपी जपी यूं ही रह जाते हैं और श्रद्धालु फायदा उठा के चला जाता है, किन श्रद्धालु खाली श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ तत्परता और संयम हो, समझ हो, नहीं तो वन वे ट्रैफिक की श्रद्धा है और तत्परता नहीं, संयम नहीं, तो गड़बड़ भी हो जाती। एक भगत था, मुंह को तो बाको बिहारी मिलेगो तभी खाऊंगो, नहीं तो नहीं खाऊंगो, बाको बिहारी खिलाएगो तब खाऊंगो। एक दिन उपवास किया, दूसरा दिन उपवास किया, तीसरा दिन उपवास किया, और रात को भूखे तो नींद आवे नहीं, जल्दी उठ के यमुना जी में नहाने जाए। चौथे दिन प्रभात को गया तो वाह, बाके बिहारी लाल की जय, यमुना तट पर पीपल के पेड़ के नीचे जो चबूतरा था वहां हलवा पड़ा था। सुबह 4:30 बजे भगत ने देखा कि बांका बिहारी ने परीक्षा ले ली, मुंह पर वो खूब राजी है, हलवा धर के हुए, वो हलवा खाया। दूसरे दिन आया तो भी हलवा मिले। उसने जाकर एक संत को कहा कि मैंने श्रद्धा किया, ओ बाके बिहार की बात बात गीता बीता तो मैं कछु मानू नहीं, वो साधु संत की बात मैं कछु नहीं मानू जानू, मैं तो बाके बिहारी पे श्रद्धा किया और बाके बिहारी मेरे लिए रोज हलवा छोड़ के जाते। बाबा ने कहा कहाँ पर? बोले फलाने घाट पर। कैसा होता है? बोले बस किसी कागज पर रख के चले जाते। बाबा जी आ गए सुबह 3 बजे, देखा कि बांका बिहारी कैसे इधर हलवा रखता है। देखा कि एक बूढ़ा है, उसको वायु की तकलीफ गुड्डे पर, और वैद्यराज ने कहा है कि गुड़ का तिल्लों के तेल में गुड़ का हलवा बनाकर गुड्डे को लगा दिया कर, बांध के सोया करो रात को। तो सुबह यमुना जी में नहाने जाता है तो वो हलवा निकाल के वहां रखता है कि कुत्ते कवे खा जाएंगे, और ये भगत राज मान रहे कि बांको बिहारी धर के जा रहे हो। तो कछु और हो रहे हो। तो श्रद्धा श्रद्धे के ज्ञान को उभारेगी, श्रद्धा श्रद्धे की अनुभूति अपनी अनुभूति एक कर देगी। भगवान ज्ञानी है कि अज्ञानी है? भगवान ज्ञानी है तो श्रद्धालु में भी ज्ञान आएगा। भगवान सलेप है कि निर्लेप है? भगवान निर्लेप है तो श्रद्धालु में भी निर्लेपता आएगी। तो श्रद्धे के गुण श्रद्धालु में आते हैं, संयम और तत्परता से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचि रेणाति गच्छति। ज्ञान प्राप्त करने से जो जितेंद्रिय तथा साधना परायण है ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भक्तों का परिश्रम, भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति में, दर्शन में, भक्त का आग्रह नहीं रहता, पक्षपात नहीं रहता। भगवान दयालु भी हैं और न्यायकारी भी हैं। जो दया करता है वो न्याय कैसे करेगा? वो खून केस है, अब मैं दया करूंगा तो छोड़ दूंगा और न्याय करूंगा तो उसको टिप दे दूंगा, सजा दूंगा। लेकिन भगवान में ये दोनों गुण एक साथ रहते हैं। जो न्याय करेगा वो दया नहीं कर सकेगा, और जो दया करेगा वो न्याय पूरा नहीं करेगा। लेकिन भगवान में ये दोनों गुण एक साथ रहते हैं। भगवान दयालु भी हैं, न्यायकारी भी हैं। भगवान न्यायकारी भी हैं और पक्षपाती भी हैं। जो न्यायकारी है वो पक्षपाती कैसे और जो पक्षपाती वो न्यायकारी कैसे? लेकिन भगवान में दोनों विरुद्ध धर्म भी रहते हैं। अगर भगवान भक्त का पक्षपात नहीं करे तो भक्ति संप्रदाय चलेगा कैसे? कौन भक्ति करे, क्यों भक्ति करे? जो कर्म करते वो फल मिलना है तो फिर भगवान की भक्ति का फल क्या, क्यों करे भक्ति? जयराम जी की। अच्छा तो भगवान पक्षपात करते तो न्यायकारी कैसे? लेकिन भगवान में ये दोनों बातें रहती। बाप मां नहीं हो सकता, बेटा बाप नहीं होता, सासू बहू नहीं बनती, लेकिन भगवान सासू भी बना बैठा है, बहू भी बना बैठा है, बाप भी बना बैठा है, बेटा भी बना बैठा है, पत्नी भी बना बैठा है और पुरुष भी बना बैठा है। है कि नहीं विरुद्ध धर्म? जो चैतन्य आत्मा पुरुष है वही चैतन्य आत्मा स्त्री है, तो भगवान तो स्त्री में भी वैसे का वैसा, पुरुष में भी वैसे का वैसा। ईसाई नन्न ने पढ़ा कि भगवान सदा है, सर्वत्र है। वो भगवान यीशु को मान लेते तो वो सर्वत्र है। तो पढ़ते पढ़ते एकांत में रहते 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 उसको लगा कि भगवान सर्वत्र है, तो बाथरूम में जाए लेकिन बाथरूम न करे वापस आ जाए, डबल के लिए जाए लेकिन न करे डबल वापस आ जाए। ब्रेक लगा दी, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, बीमार हो गई। दूसरी नन्हों ने पूछा कि आखिर क्या बात है? बोले मैं तो पढ़ती हूँ और वो भगवान सर्वत्र है, सदा है, और सर्वत्र है तो बाथरूम में भी है, तो मैं उनके आगे कपड़े कैसे लेगा? सर्वत्र है तो लेटरिन में भी है, सर्वत्र है तो मैं उनके आगे ऐसे नग्न हूँ? अरे जो सर्वत्र है तो तेरे भीतर भी है, बाहर भी है, वो सामान्य सत्ता है। आकृति विशेष में हो लज्जा होती है, सामान्य रूप से सर्वत्र है तो वस्त्रों में भी तो है, वस्त्रों के भीतर भी तो है, तेरे भीतर भी है। उसको बहुत बहुत समझाया कि ऑपरेशन वो कराओगे, डॉक्टर और हकीम भी करेंगे तो ये कचरा निकलेगा, तभी तो स्वस्थ रहोगे। तो एक देशी भाव में आ गई, नहीं तत्परता है, ज्ञान भी चाहिए। बोले भगवान बापूजी सर्वत्र हैं तो फिर हम धरती पर थूकते, ये करते वो करते। एक ने तो मेरे से पूछा कि भगवान सर्वत्र है, मैं क्या है? तो बोले मैं नाक साफ करता हूं तो लींट कहां फेंकूं? वो पूछने वाले अभी यहीं हैं, इसी मंडप में हैं। 10 साल पहले पूछा था उन्होंने। तो भाई आपके शरीर में 100,000, 2,000, 1,000,000, 2,00,000 नहीं, करोड़ों जीवाणु हैं। सो मेनी बैक्टीरिया, सो मेनी, गिनकर नहीं कह सकते, तो 1,000,000, 2,000,000, 1,000,000,000, नो, सो मेनी बैक्टीरिया, सो मेनी, बहुत जीवाणु है। उसको तो अभी विज्ञानी गिन नहीं पाए कि इतने जीवाणु रहते एक आदमी में, गिन पाए क्या? बोलते करोड़ों करोड़ों। आप ग्लास में मुंह लगाते हैं तो लाखों कीटाणु उसके साथ जुड़ जाते हैं। आप श्वास लेते हैं तो सैकड़ों कीटाणु लेते हैं और श्वास में सैकड़ों कीटाणु छोड़ते हैं, करेक्ट डॉक्टर? तो वो कीटाणु खाते भी हैं तभी जीते हैं, जो खाते हैं तो वो निकालते भी होंगे। जयराम जी की, जो खाते हैं तो निकालते भी होंगे, समझ गए ना? भले उनके माप का निकालते होंगे सिंगल डबल, लेकिन करते होंगे। तो इतने इतने करोड़ों कीटाणु तुम्हारे अंदर रहते हैं और खाते हैं पीते हैं तो सब कुछ करते होंगे, फिर भी उनके खाने पीने और उनका मसाला निकलने से आप अपवित्र नहीं हो जाते, क्योंकि वो आपके अंदर ही है सब। आप अशुद्ध नहीं होते उनके खाने पीने से, जब भी वो निकालते होंगे उस समय आप अपवित्र हो गए, ऐसा कभी महसूस हुआ क्या? वो तो बार बार खाते और बार बार निकलता होगा, जैसे तो कुछ सिस्टम होगा। तो फिर भी आप अपने को अपवित्र, उनके कारण अपवित्र महसूस नहीं करते, क्योंकि वो आपके अंतर्गत है। तो जैसे आपकी बॉडी की सीमा 5.5 फुट, उसमें ये करोड़ों कीटाणु, उससे भी ज्यादा विराट, आपसे तो विराट बहुत बड़ा है, तो विराट इतना बड़ा है कि विराट के आगे, तुम्हारे आगे जितने कीटाणु माना रखते हैं, उतनी भी विराट के आगे तुम्हारा शरीर माना नहीं रखता है। तो तुम्हारे नाक की लींट का बोझा उसको कैसे लगेगा, और तुम्हारे सिंगल डबल का असर क्या होगा उधर? फाइन, तो तत्परता हो तो विराट के स्वरूप का पता चले, नहीं तो सुन लिया भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र है। एक सूरत का भगत था, पहले पहले ऐसे किसी के भगत के साथ आ गया था। बोले बापूजी भगवान बड्डामा छे, हूँ मानतो ज नहीं। मैं कीधुँ केम भाई, शू थयुं तने, शू तकलीफ पड़ी? सूरत वाला था, तब उठा बोलता, जो भगवान बड्डामा हो तो। मैं कीधुँ पछी तो एटले पछी शू? લોકો લાખો રૂપિયાની હેરફેર કરે છે એને કોઈ માન પકડતું નથી, અને એક ગરીબ માણસે, પેલો કચરા વીણવા વાળાએ કોઈની ચંપલ ચોરાવી, તો પછી એના ઉપર 3 માણસનો માર પડ્યો। જો ભગવાન બડ્ડામાં હોય તો એની અંદર બી ભગવાન છે, તો એ ભગવાન એની અંદરનો ભગવાન પેલા 3ને કેમ ના મારે? મેં ક્યાં ધન્ય ધન્ય અવતાર ધન્ય। भगवान सब में है ये मैं नहीं मानता हूँ। मैं क्या, क्यों? बोले एक भिखारी ने किसी की चप्पल चुरा ली, तो देख लिया, तो देख लिया तो 3 आदमी उसको मार रहे हैं। अगर भगवान सर्वत्र हो तो फिर 3 आदमी उसको क्यों मारते हैं? तो इस छोटे मोटे कुतर्कों से भगवान के अस्तित्व को खतरा नहीं होता। भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वसत्तामान है। मारना न मारना ये मन के फुरने होते, मन भिन्न भिन्न होते। दूसरा एक प्रोफेसर मिला, बोले बापूजी मैं आपके गुरुजी को तो मानता हूँ लेकिन उनकी बातें मैं नहीं मानता हूँ। मैं क्या, फिर क्या तकलीफ है? बोले गुरुजी बोलते हैं कि भगवान सर्वत्र है, अगर भगवान सर्वत्र हो तो एक आदमी दुखी हो तो सब दुखी होना चाहिए, एक आदमी खाए तो सबका पेट भर जाना चाहिए। जब सब में है तो एक यहाँ भगवान खुश हो तो सब में खुश हो जाना चाहिए। तो एक आदमी मरे, आत्मा सब में एक है, तो एक आदमी मर जाए तो सब मरने चाहिए। मैं क्या तुम प्रोफेसर हो? बोले हाँ। मैं क्या तुम तो ऐसी बात करते हो कि पावर हाउस की, फलाने पावर हाउस की लाइन पूरे अहमदाबाद में जाती है, तो एक के घर का फ्यूज उड़ जाए तो सारे अहमदाबाद वालों का फ्यूज उड़ना चाहिए। एक पंखा चालू हो तो सब पंखे चालू हो जाने चाहिए, एक पंखा बंद करो तो सारे अहमदाबाद के पंखे बंद हो जाने चाहिए। तुम तो ये बात बोल रहे भाई, चैतन्य सर्वत्र एक है लेकिन अंतःकरण तो भिन्न भिन्न है। लाइट का सप्लाई जो पावर हाउस से एक है लेकिन लाइनें तो अलग अलग जाती है, लोड बटा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। तुम्हारे घर में लाइट आती उसी मीटर से, लेकिन तुम गीजर में फिट करते तो पानी गर्म करेगी, फ्रिज में फिट करते तो पानी ठंडा करेगी। सत्ता तो दोनों में लाइट की है, एसी में करोगे तो हवा ठंडी करेगी, और कपड़ा प्रेस करने की उसमें प्रेस में करोगे तो कपड़े को गर्म करेगी। एसी में तो ठंडक देती है वही लाइट, और हीटर में गर्मी देती है। लाइट तो वही की हुई, इंस्ट्रूमेंट जैसे होंगे ऐसा होगा। ऐसी सत्ता भगवान की एक है, जैसा जैसा अंतःकरण होगा, जैसा जैसा भाव होगा, जैसा जैसा विचार होगा, ऐसा ऐसा उसका आप उपयोग करते। इसलिए कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म अगर ईश्वर और विधि के, भगवान के विधान के अनुसार करते हो तो तुम्हारी उन्नति होती है, और विधान के खिलाफ करते हो तो धीरे धीरे भगवत सत्ता तुमको नीचियों में ले जाती। तो भगवान दयालु कैसे हुए? भगवान दयालु इसलिए हैं कि उसने सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, धरती बनाई, हवाएं बनाई, पानी बनाया, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया, ये दया है उनकी। फिर तुम उनके विधान के अनुसार करते हो तो तुम्हें उन्नत करते हैं, प्रोग्रेस हो जाता है, और नहीं भी करते हो तभी भी वो इंतजार तो कर रहे हैं। कि एक आदमी ने बोला कि देखो भगवान अगर सर्वसमर्थ है, सब में है, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं किया कि कोई आदमी झूठ बोले तो उसका जीभ कट जाए, कहीं बुरी नज़र डाले तो उसकी आंखें अंधी हो जाए, किसी की चोरी करे तो उसका हाथ पैरालाइज हो जाए, ऐसा भगवान ने क्यों नहीं करा? ऐसा करते तो दुनिया बड़ी अच्छी रहती। कोई क्रिमिनल नहीं होता। तो हम आपसे पूछते हैं कि आपका बेटा चोरी करे तो आप उसका हाथ काटने को तैयार हो? बोले नहीं। बुरी नजर से देखे तो उसकी आंख निकालने को आप राजी हो? बोले नहीं। झूठ बोले या बुरा कुछ बोले तो जीभ काटने को आप राजी हो? बोले नहीं। क्यों? कि अपना बेटा है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। आपको दया आती है अपने बेटे के प्रति? आती है कि नहीं आती? आती है। तो तुम्हारा बेटा तो 10-20 साल से है, वो भगवान का बेटा अनादिकाल से, तो भगवान भी दया करते कि चलो झूठ बोलता है तभी भी उसको जीभ चलती है, चोरी करता तभी भी चलती है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो 1000 जन्म के बाद भी बच्चा सुधर जाएगा, इसलिए दयालु है। और आप जब तक शुभ करते हैं तो आपको शुभ का फल देता है न्यायकारी भी। तो भगवान में दयालुता और न्यायकारिता है। अच्छा, और समझो आपने गड़बड़ किया तभी भी उसका दंड देते हैं, तो दंड देते हैं आपको सुधरने के लिए, दुश्मनी से नहीं। पांडवों के प्रति भगवान कोमलता बरतते, उनकी सज्जनता है, लेकिन कौरवों का भी हित ही चाहते हैं कि चलो ये जल्दी फैसला हो जाए तो आगे कई इनके जन्मों के कर्म ज़्यादा ना बने, तो इनको मरवाना भी दया है और उनको जितवाना भी दया है और न्याय है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है कि भाई नहीं तो आगे नस खराब हो जाएगी, ऐसे ही भगवान जब दंड देते, सजा देते, तो भी उनकी दया होता है और न्यायकारिता भी है। वो किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं अथवा किसी से राग द्वेष से नहीं कर रहे हैं, जीवों के कल्याण के लिए उनकी व्यवस्था है। इसलिए भगवान में विरुद्ध धर्म भी रहते हैं, दयालुता भी रहती है, न्यायकारिता भी रहती। अब उस दयालु और न्यायकारी भगवान के भगवत स्वभाव में थोड़ी देर आप हम शांत हो जाएं।